में से कोई आगे आके बैठना चाहते हैं नीचे तो बैठ सकते हैं आगे आके। मनसा सेवा विभिन्न प्रकार की सेवाओं में से एक उच्च श्रेणी की सेवा है और बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि बाकी सभी सेवाएं तभी सफल होती हैं जब उसमें मनसा सेवा शामिल होती है। बहुत बार बहुत से भाई बहनों का ये सवाल उठता है कि मनसा सेवा कैसे करें, कोई ऐसी पहचान वाली आत्माएं होती हैं, उनको हम योगदान देना चाहते हैं, कोई दुखी आत्माएं होती हैं, उन तक वाइब्रेशंस पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन हमारे मन में उठते रहते हैं और समय प्रति समय बाबा की मुरलियों में मनसा सेवा से रिलेटेड कई बातें हम सुनते हैं, लेकिन उसको करने की विधि क्या है वो हमारे पास बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब बाकी सारे साधन खत्म हो जाएंगे तो यही एक साधन जो श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ साधन है वो हमारे पास रह जाएगा। इसी विषय को आज हमारी अनुभवी बहन आदरणीय कुलदीप बहन जी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी पालना में है, आपको आगे बढ़ाने में विशेष रूप से यहाँ लेकर आए हैं, तो ये स्पष्ट करेंगी विषय और उसके बाद इसका रियलाइजेशन भी आपको कराएंगी आदरणीय कुलदीप बहन।
ओम शांति। संगम युग पर बाप दादा ने हम सब बच्चों को अपने साथ मुख्य तीन समन बाबा रोज समझाता है। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। लेकिन एक बार जानकी दादी ने बताया था, एक ऐसा संबंध है जो सर्व संबंधों को पक्का करता है, वो कौन सा है? टीचर का संबंध। क्योंकि टीचर हमें पढ़ाता भी है और सिखाता भी है, शिक्षाएं देकर ऊंच से ऊंच भी बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता है। और हमारी पढ़ाई के सब्जेक्ट कितने हैं? चार। बोलो तो नहीं तो नींद आती है ना। तो पढ़ाई के सब्जेक्ट है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा में भी बाबा ने कई प्रकार बताए हैं, तन से करो या मन से करो या धन से करो, मनसा से करो, वाचा से करो या कर्मणा से। क्योंकि ब्राह्मणों को सेवा के बिना मजा नहीं आता है। आता है मजा किसी को? सेवा ही हमारे जीवन का आधार है। लेकिन जैसे अभी आप सुन रहे थे कमलेश दीदी से भी, कि मुख्य रूप से बाबा ने मनसा सेवा को सर्वश्रेष्ठ सेवा बताया है, क्योंकि अंतिम समय अब आ चुका है, आने वाला नहीं है। अभी हम देख रहे चारों तरफ इतनी हलचल है, अशांति है, दुख है, सभी आत्माएं पुकार रही हैं। कई बार बाबा पूछते हैं, आपको क्या उनकी पुकार सुनाई नहीं देती है? पुकार सुनाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? उन पर उपकार करना चाहिए। लेकिन कब हमें सुनाई देंगी? जब हम अपने मनसा को कंप्लीट शांत करें। मनसा सेवा के लिए मन को शांत करना सबसे जरूरी है, क्योंकि हम सब की कंप्लेन क्या है कि हमारा मन शांत नहीं होता है, भटकता रहता है, व्यर्थ संकल्पों में हम बहुत खो जाते हैं। तो मनसा में जितना शांति की शक्ति को भरेंगे, उतना हम अनेक आत्माओं को विश्व कल्याण हित, बाबा ने हमें ये सेवा बताई है, क्योंकि सारे विश्व तक हम तन से या मनसा वाचा से या कर्मणा से सेवा नहीं कर सकेंगे, केवल मनसा सेवा से ही हम सारे विश्व की आत्माओं को जो चाहे उनको दे सकते हैं। अभी लोगों को क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, क्योंकि हर आत्मा निर्बल हो चुकी है। उनके पास वो शक्ति भी नहीं कि हम अपने मन को परमात्मा से जोड़ सके, क्योंकि आने वाले समय में बाबा ने बताया ना, ऐसी कमजोर आत्माएं आएंगी, आप उनको कहेंगे 7 दिन का कोर्स करो तो बहुत परेशान होंगे, बोलते 7 दिन भी हम वेट नहीं कर सकते, आपके पास जो है वो सिद्धि के रूप में हमें दे दो। तो इसलिए हमारा जितना चित्त साफ होगा, स्वच्छ होगा, शांत होगा, तो हम अनेक आत्माओं के मन की आवाज को सुन सकेंगे और जो उनको चाहिए वो प्राप्ति कैसे कराएंगे? नैनों की भाषा से, वाचा से नहीं। कई बार वाचा से कई आत्माएं जो है ना, इतनी उलझी हुई होती हैं, वो सुनते हुए भी नहीं सुनते। कोर्स में आप कितना भी स्पष्टीकरण देंगे तो भी आपको वही सुनाएंगे जो उनके मन में है। इसलिए दूसरा, हमें अपने मन को एकाग्रचित करना है, क्योंकि अपने मन को जब तक हम बाबा से जोड़ेंगे नहीं, जो सर्व प्राप्तियों का आधार है, सागर है, क्योंकि अगर मुझे शांति देनी है तो भी किससे लेंगे? बाबा से लेंगे ना। तो ये नहीं सोचना मैं शांति दे रहा हूं, लेकिन शांति के सागर बाबा से मैं अपने अंदर शांति भरकर अपनी भ्रुकुटी के द्वारा अनेक आत्माओं को वो शांति की किरणें पहुंचा रही। तो जैसे भट्टी में हम लक्ष्य रखते हैं कि मुख का मौन रखें, लेकिन मुख का मौन आप देखते, कई साधु सन्यासी गुफाओं में जाकर कई कई वर्षों तक भी उन्होंने मौन व्रत लिया है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब मौन खोलते हैं तो क्रोध आ जाता है, क्योंकि मन का मौन नहीं था। इसीलिए मन का मौन मनसा सेवा में बहुत सहायक है। इसलिए मन एकांत और एकाग्रता का अनुभव जब करेगा, जितना एक के अंत में रहेंगे, एकांतवासी बनेंगे, उतना एकाग्रता होगी। और मन जहां जाता है, बुद्धि उसके पीछे जरूर जाती है। जैसे हमें कोई स्थान की सेवा करनी है, मनसा में उस स्थान का चित्र बनाएं। मान लो, जैसे कई बार कई भाई बहने बहुत दुखी होकर आते, बहन जी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, बाबा क्या मदद कर सकता है? उस समय हमको भी लगता है इस आत्मा को कैसे मदद करे, बाबा की मदद का अनुभव कराना है। उस समय हम कोर्ट में कैसे जाएंगे? फिजिकली जाएंगे। मनसा में कोर्ट का चित्र बनाइए, उस आत्मा को भी इमर्ज करो और बाबा से कहना है, बाबा आपका ये बच्चा आपसे ये मदद चाहता है, तो उन्हें मदद का भी अनुभव होगा। कई बार बीमारियों से भी ब्राह्मण थक जाते हैं, कहते बहन जी इतना बीमार हूं, थक गया, कुछ मदद करो। अगर वो हॉस्पिटल में है या जहां भी है, हम मनसा से उस स्थान का चित्र बनाएं, उस आत्मा तक पहुंचें। लेकिन हम किन आत्माओं की सेवा कर सकते हैं जिनके प्रति हमारे मन में शुभ भाव और भावनाएं होंगी, क्योंकि शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि, शुभ वाणी, शुभ कर्म, ये सब मनसा सेवा में मदद करते हैं। हमारी, जैसे बाबा ने कई बार बताया, मनसा से आप शक्तियों का दान दो, वाचा से ज्ञान का दान दो, और कर्मणा से गुणों का दान दो। तो जब हमारे आगे कोई आता है आशा लेकर, और अगर हमारी वृत्ति में उसके प्रति शुभ भाव और भावना नहीं है, स्नेह की भावना नहीं है, रहम की भावना नहीं है, कल्याण की भावना नहीं है, तो उसको भी महसूस होता है ये मेरा कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए ये गुण हमें आवश्यक हैं। रहमदिल होना है, स्नेहयुक्त बनना है, और कल्याण की भावना रखकर शुभ भावना, शुभ कामना उन आत्माओं को देनी है। क्योंकि हमारी भावनाओं को हर आत्मा कैच करती है, वो कितना भी दूर क्यों ना हो। यहां से आप बैठे बैठे किसी अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति के लिए अच्छा या बुरा जो भी सोचते हैं, उसको वहां वो फीलिंग आती है। कई बार हम देखते भी हैं कि हम किसी को बहुत जोर से याद करते, या तो वो व्यक्ति सामने आ जाता है और हमारे मुख से अचानक निकलता है, मैंने आज आपको बहुत जोर से याद किया और आप आ गए, या तो उसका फोन आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने जो मनसा से उस आत्मा को याद किया, याद से याद पहुंची ना, तो बाबा के पास हमारी याद पहुंचती या नहीं पहुंचती। कई लोग बाबा को भी कंप्लेन करते, आपको पता नहीं है बाबा मैं आपको कितना याद करता हूं, आप तो मुझे मदद ही नहीं करते हो। जब मनुष्य को आपकी याद पहुंच सकती है, भगवान तो हर आत्मा की आवाज को सुनता है, हम नहीं सुनते क्योंकि हम देहाभिमान में रहते हैं ना। बाबा हमसे क्या कहता वो हम नहीं सुन सकते। इसीलिए कहा मन जितना शांत होगा, अमृत वेले भी हम जब योग करते हैं ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा से रू रिहान सिर्फ कंप्लेंट्स। कंप्लेंट सुनना आपको पसंद है क्या? कोई सारा दिन आपको कंप्लेंट सुनाए तो आपको अच्छा लगता है? एक बार दो बार सुनने के बाद बोलते हुए मुझे मत सुनाओ। तो प्यार से हम जब बाबा से बात करते हैं, बात करने के बाद, जैसे फोन में भी नियम क्या है, एक बार हम बात करते हैं, फिर थोड़ा हमको शांत होना है सामने वाले का रिस्पॉन्स सुनने के लिए। अगर हम बोलते ही जा रहे हैं तो सामने वाला क्या बोलता है या क्या चाहता है हमें आंसर करना, फिर क्या बोलते लास्ट में, इतना सुनाया क्या असर हुआ आपको? कुछ भी नहीं बोला। वो बोलता है आपने बोलने का अवसर कहां दिया। तो हम भी बाबा के साथ बात करते समय बीच बीच में मन को शांत करें कि बाबा क्या कहना चाहता है, वो भी सुने। ऐसे ही हम अपने मन में बेहद की भावना रखें, क्योंकि हमें ये नहीं कि सिर्फ अपने परिवार को सकाश देनी है, या मेरे को जिनसे प्यार है केवल उनको ही सकाश देनी है। जिनकी बेहद वृत्ति होगी उनका हर कर्म बेहद में होगा, उनका उनकी दृष्टि भी बेहद में होगी, उनकी भावनाएं भी बेहद में जाएंगी, उनके गुण भी जो कर्म करेंगे, काम करना, जैसे बाबा भी कई बार कहते थे बच्चों को, मैं सकाश देता हूं, है ना। कईयों ने सुना भी होगा कि जब दादियां भाऊ कहते हैं ना बाबा के लौकिक भतीजे को, विश्व किशोर दादा बीमार थे, वो मुंबई में थे और बाबा यहां से उस बच्चे को सकाश देते थे और उनको वहां महसूस होता था बाबा ने मेरे लिए ये कहा, और वो बाबा से बात करते थे, दोनों को ऐसा लगता था जो मैंने उसके लिए संकल्प किया उसको भी पहुंचा। तो इस प्रकार अभी सकाश देने की सेवा करनी है, क्योंकि अभी सब आत्माएं लेना चाहती है और हम कौन हैं? दाता विधाता वरदाता के बच्चे, मास्टर विधाता और वरदाता है ना। तो हमने जो बाबा से पालना ली है, जो प्राप्तियां की हैं, वो हम मनसा से हर आत्मा को देने का पुरुषार्थ करें। जैसे आज भी हम बाप दादा की या दादियों की दृष्टि क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि बाबा जो भी कहता है नैनों की भाषा से कहता है। दादियां भी आप देखते हैं ना, अगर एक सेकंड किसी को दृष्टि दे देती हैं, तो बहुत काल से जो हम अभ्यास करते थे अशरीरी हो जाएं, नहीं हो पाते, लेकिन दादी ने दृष्टि दी और अशरीरी हो गए। ये उनके पुरुषार्थ की सिद्धि हमने अनुभव की। ऐसे हम भी सिद्धि स्वरूप आत्माएं बने कि हम भी जिस आत्मा पर दृष्टि डालें उसे ऐसा महसूस हो कि मेरे अनेक जन्मों की प्यास बुझ गई, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अभी आत्माएं प्राप्ति की इच्छा से हमारे पास आएंगी, पुरुषार्थ की इच्छा से नहीं। पुरुषार्थ करने के लिए कहेंगे तो वो थक चुके हैं, सबको आराम देना है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बहुत बार सीजन की मुरलियों में ड्रिल कराते रहे कि बच्चे बार बार आप अशरीरी बन जाओ, पांच स्वरूपों का अनुभव करो, सैर करो, तीनों लोकों की सैर करो। तो इसमें आपको साकार लोक में भी जो आत्माएं किस किस प्रकार से उनके पास कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जिनका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, और हम आत्माएं उनको मनसा से या दृष्टि से है ना, नजर से निहाल कर सकते हैं। क्योंकि आत्माएं बेहाल हैं, उनको हम अपनी नजरों से निहाल करें। लेकिन ये होगा कब? जब हमारे मन में स्वच्छता हो, पवित्रता हो। अगर कोई भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना होगी, उस आत्मा तक हमारी वो शक्तियां या गुण जो हम देना चाहते हैं उसको नहीं पहुंचेगी। वैसे तो हम जब मनसा सेवा करते हैं, वर्ल्ड ग्लोब के ऊपर बैठकर सारे विश्व की आत्माओं को देते हैं, तो हर एक को पहुंचना चाहिए। जैसे सूर्य एक जगह से पूरे विश्व में प्रकाश फैला रहा है, वो ऐसा नहीं कि मैं अभी आपसे नाराज हूं, मैं इधर ब्रह्म कुमारी इसके पास तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलता है सूर्य? ऐसा करता है? सूर्य को हम नहीं देखना चाहते तो हम खिड़कियां दरवाजे वेंटिलेटर बंद करके मोटे मोटे पर्दे लगा देते हैं, क्योंकि हमको इसकी रोशनी से नींद नहीं आ रही है। तो हमने ढका है, सूर्य ने कोई कमी नहीं रखी अपना प्रकाश फैलाने में। ऐसे सूर्य मास्टर सूर्य बन हम भी अपनी शक्तियों का प्रकाश फैलाएं, जो सब तक पहुंचे। वो तब पहुंचेगा जब हमारे अंदर मन की स्वच्छता, क्योंकि बाबा भी और दादियां भी हम सबको क्या कहते, कभी भी अपने चित्त को मैला नहीं करो, दूसरे की बुराई को अपने चित्त पर लेकर हम अपना चित्त मैला कर देते हैं तो वो मैले चित्त में बाबा कैसे आएगा। आज भक्त लोग भी भगवान की एक जड़ मूर्ति को स्थापित करने के लिए कितनी सफाई करते, पूजा गृह को लोग अपने बड़े बड़े घरों के लोग भी ऐसा नहीं बोलते सर्वेंट को तुम जाके साफ कर दो, खुद सफाई करते हैं, क्योंकि ये पवित्र स्थान है, इसको हम खुद पवित्रता से अच्छी तरह से स्थान को साफ करेंगे, क्योंकि यहां भगवान विराजमान है तो बाबा कहां आएंगे। जिसका मन स्वच्छ होगा, हम आह्वान करते हैं ना, बाबा आओ, बाबा ने छुट्टी दी हुई है ना, बाबा को कहो बाबा आओ मेरे साथी, बाबा आकर मुझे मदद करो। लेकिन वो आएगा कहाँ? जहां मैला स्थान होगा वहां आएगा? तो इसलिए अपने मन में कोई भी प्रकार की मलिनता ना हो। तो अपने भाव और भावनाओं को सदा चेक करें, क्योंकि हम बोले तो भी शुभ बोले। अगर हम वरदानी बोल बोलते हैं, किसी को लग जाता है, वो कितना खुश होता है। हम तो कई बार बोलकर भी भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाली आत्मा आकर बोलती, बहन जी आपने एक बार मुझे वरदान दिया, सचमुच मुझे लग गया। अभी भी हम यहाँ आए तो हमको एक दिन एक भाई ने फोन किया कि बहन जी आपने अभी जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है ना बंजारा हिल में, और वो हमने जो भी आता है हम उसको यही भावना बिठाते हैं, ये भगवान का कार्य है, आप इसको अगर सच्चे दिल से करोगे, कमर्शियल रूप से नहीं करना, अपना घर समझ के करोगे, माला माल हो जाओगे। और उसको भी ऐसा लगा मुझे करना चाहिए, कुछ काम फ्री किए उसने। और दो तीन दिन पहले उसने बहुत काल से ट्राई किया, मेरा खुद का ऑफिस हो, किराए का था, बोलता है कि दीदी जहां भी है फोन करके बता दो कि उनका जो वरदान है मुझे लग गया, मेरा ऑफिस बन गया। तो ये क्या है, हम जब सच्चे दिल से शुभ भावना से किसी आत्मा के प्रति भी जो बोल बोलते हैं उसके लिए वरदान बन जाता है। देने वाला तो बाबा है, हम तो उसको यही भावना बिठाते, ये भगवान का कार्य, बाबा आपको वरदानों से भरपूर कर देगा, माला माल कर देगा। और अभी वो बोलता है ठीक है मैं एक आर्किटेक्ट भी लाऊंगा, तो वो ऐसा आर्किटेक्ट लाऊंगा जो फ्री काम करे, उसको भी भावना बिठाऊंगा कि यहाँ जो भी काम करता है वो माला माल हो जाता है ना। तो हमारे अंदर जितना शुभ भावना होगी बाबा के यज्ञ के लिए, उतना हम औरों के मन में भी शुभ भावना बिठाते हैं। हम ये ध्यान रखें, हम अपने मन को व्यर्थ से मुक्त रखें, क्योंकि व्यर्थ क्या है, कीचड़ा है ना। जहां कीचड़ा होगा वहां बाबा कैसे आएंगे मदद करने के लिए। ज्यादातर भाई बहनों की कंप्लेन है, बाबा कहां मदद करता है, आपको करता होगा, हमको तो कभी नहीं करता, क्या कमी है। आप सोचो, कई लोग बोलते हैं आप बाबा शब्द कहते ही आपका चेहरा खिल जाता, हम तो बाबा ऐसा सूखा सूखा ही बोलते हैं, हमको कुछ वो खुशी का अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मन को हमने बाबा के साथ सही तरीके से जोड़ा नहीं है। जब मन बुद्धि बाबा से जुड़े रहेंगे और बाबा से हम सर्व संबंधों का अनुभव का रस लेंगे, हमारे अंदर जब रस भरेगा तो हम औरों को वो रस का अनुभव करा सकते हैं ना। जिससे बाबा कहते हैं ना, जो सब रस बाबा से लेगा वो एक रस रह सकेगा, एक बाबा से रस लेंगे तो एक रस अवस्था रहेगी। क्योंकि बाबा से हमें सब कुछ मिलता है, फिर हमारा मन क्यों भटकता है इधर उधर। बाबा करण करावन हार है, विश्व कल्याणकारी बाबा हमारा बाप है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर हमारा बाप है। हमारे अंदर वो कमी क्यों कि शांति नहीं है, मेरे अंदर शक्ति नहीं, आनंद नहीं, प्रेम ही नहीं, कोई प्यार ही नहीं करता। जो प्यार के सागर में डूबा रहेगा वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है, क्योंकि प्यार के सागर का अनुभव करने वाली आत्माएं ही अनेक आत्माओं को प्यार देने का वो सुख अनुभव करा सकते, क्योंकि प्रेम में हर आत्मा को सुख मिलता है। अभी आज हम सब बाबा के बच्चे कैसे बने, क्या मिला, प्यार मिला है ना। और कोई भी स्थान ऐसा नहीं सत्संग जहां प्यार बांटा जाए, लेकिन बाबा के पास रोज बाबा हमें कैसे संबोधन करते हैं, मीठे बच्चे, लास्ट में मीठे मीठे डबल बार बोलता है बाबा, मीठे मीठे सिक्की लदे। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमारे ब्राह्मण बच्चों को थोड़ा बाबा नाजुक बना दिया है, ज्यादा लाड़ करने से क्या होता है ना, वो बच्चे को कोई डांट दे तो वो जल्दी रोता है। जिसको रोज डांट पड़ती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार भी दो तो वो रोता नहीं है, क्योंकि आदत है। हम लोग इतने सेंसिटिव है, जरा सा कोई कुछ बोल दे क्या होता है, चेहरा उतर जाता, फीलिंग आ जाती। तो गुलजार दादी हमेशा बोलती ना, जो बार बार फीलिंग में आएगा वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो मन कमजोर है या शक्तिशाली है? हाँ, कमजोर है ना, जो फेल होता है फीलिंग में आता है वो शक्तिशाली कैसे होगा। इसलिए ये बाबा हमें इतना अच्छा डोज दे रहा है मीठे मीठे, है ना। हम तो हंसी में कई बार कहते, देखो शुरू में बाबा मीठे बच्चे किस लिए कहता है, मुरली में एनेस्थीसिया देता है, है ना। उसको बाद में सर्जरी करनी होती है ना, हमारा सब अंदर का हाल चाल सब सुनाता है, बच्चों की चलन कैसी है, मनसा कैसी है, वाचा कैसी है, है ना। तो हमारा सारा चार्ट सुना के हम बड़ी खुशी से सुनते हैं या नहीं, हाँ खुशी से, है ना। कभी भैंस बुद्धि बोलता है, पत्थर बुद्धि बोलता है, तो भी हम हंसते हैं, रियलाइज करते कि सचमुच ऐसा है, क्योंकि बाबा को प्यार है। वही हम अगर बोल दें ए भाई भैंस बुद्धि इधर आ, फिर क्या होगा, फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर उतना प्यार नहीं। तो बाबा सर्जरी करता है, फिर सर्जन क्या करता है, बाद में काफी उसको वीकनेस आती है ना, फिर ब्लड भी चढ़ाता है और सिलाइन भी, फिर लास्ट का मीठे मीठे सिक्की लदे, वो ब्लड भी चढ़ा दिया सिलाइन, हमको पता भी नहीं चला कि हमारा ऑपरेशन हो गया, है ना। तो इसलिए हम ऐसा ना हो कि बाबा के ये महावाक्यों को हम सुन सुन करके नाजुक बने, लेकिन मजबूत बने, कि सिकी लदे हम तब होंगे अगर हम फेल नहीं होंगे, जब हम फीलिंग में नहीं आएंगे, और हमारा मन शक्तिशाली बनेगा। बार बार अगर हम सुनेंगे ना मीठे मीठे सिकी लदे, सिकी लदे माना कितना प्यार से बाबा हमको, कि तुम मेरे को इतना समय के बाद मिले हो, वो इतना समय का प्यार दे रहा है और हम उस प्यार में कमजोर बन रहे, इसका मतलब हम प्यार ले नहीं रहे। बाबा का प्यार हमें बहुत बहुत शक्तिशाली बनाता है। देखो बाबा के प्यार से हमने विकारों से किनारा किया है या नहीं, हाँ क्या समझते सभी, बाबा के प्यार से ही हम विकारों से न्यारे बने और बाबा के प्यारे बने। तो प्यार भी देता है साथ साथ शिक्षा भी देता है, है ना। कभी कभी बच्चों को माँ बाप प्यार करके शिक्षा देते हैं ना, तब थोड़ा बच्चे फीलिंग में आ जाते कि मेरे को ऐसा क्यों बोला। लेकिन शिक्षा किसको दी जाती है, जिससे प्यार होता है, जिसमें अपनापन होता है। तो बाबा को बहुत हम बच्चों से इतना अटूट प्यार है, वो नहीं चाहता हमारी इतनी सी भी कमी देखना। तो इसीलिए हमारी मन की सब कमजोरियों को मिटाने से ही हम मनसा सेवा कर सकेंगे। कोई भी कमी कमजोरी होगी वो मन में खटकती है। आप देखो और कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारा मन तो अपने आप को देखता रहता है ना। मान लो मैंने कोई भूल की, समझो मैंने बाजार से कोई हमारे घर में मिठाई लाया और मैंने चुपके से खाई, किसी ने भी नहीं देखा, चुपके से एक मिठाई खा ली और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा मैंने खाई है, तो भी हमको डर क्या लगता है, क्या डर लगता है, बाबा ने देख लिया होगा। बाबा भी बोलता है मैं क्या फालतू चीजें देखता थोड़ी हूं। लेकिन आपका मन जो खाता है ना, उससे हमारा खाता बनता रहता है विकर्मों का। कोई भी भूल हो, जरूरी नहीं मिठाई खा ली, चाहे हमने झूठ बोल दिया, क्लास में क्यों नहीं आए झूठ बोल दिया, क्या है बहन जी को क्या मालूम, बड़ा घर में आके इंक्वायरी करने वाले, और हमको क्या जरूरत पड़ी है इंक्वायरी करने की। एक एक की इंक्वायरी करेंगे तो हमारा मन में कितने व्यर्थ संकल्प चलेंगे ना। हम झूठ बोलने के बाद हमारा मन कैसा रहता है, योग लगेगा। अगर हम आपको योग में दृष्टि भी देंगे ना, आपको लगेगा शायद बहन जी को किसी ने बता दिया है, मेरे को ही देख रहे थे आज, मुरली पढ़ते समय भी बार बार मेरे पर दृष्टि आ रही थी, शायद कुछ बता दिया किसी ने। तो मेरे मन की हालत क्या हो रही है? मन शक्ति ले रहा है मुरली से, योग भी नहीं लग रहा है, तो हम अपने मन को खुद ही कमजोर करते। अब कमजोर मन कैसे सेवा करेगा? तो इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना है। वो पॉइंट्स देखो जो मेरे मन को शक्ति देते हैं, वो चाहे बाबा की मुरलियों में देखो या योग में विशेष वो अनुभव करो कि मुझे बाबा से आज विशेष शक्तियों का अनुभव करना है। मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में रहना है। जैसे आज भी दीदी ने बहुत अच्छी बात सुनाई, पॉलिटिशियंस देखो एक बार सीट पकड़ ले तो छोड़ते नहीं, और हमको इतने स्वमानों की सीट बाबा ने दी है तो हम एक भी स्वमान लेकर नहीं बैठते। अपने स्वमान में हम जितना रहेंगे उतना बाबा से हमको अनेक आत्माओं से भी सम्मान प्राप्त होगा। मांगने की जरूरत नहीं है, मान या प्यार कभी मांगने से नहीं मिलता है, दिल से दिल अगर मिल जाता है ना, किसी के दिल को छू लेने वाली सेवा करो, ऐसा खुश कर दो वो आत्मा के दिल से आवाज निकले कि सचमुच जो मुझे चाहिए था इस आत्मा ने मुझे बाबा से जोड़कर प्राप्ति करा दी। कई बार कई लोग बोलते हमें योग लगाना ही तो नहीं आता है, आप कैसे बोलते हो बाबा से मन जोड़ लो, हमारा तो योग लगता ही नहीं है। तो ना लगने का कारण क्या है? यही अज्ञानता है ना, क्योंकि हमारे मन को हमने पूरा छुट्टी दी हुई है, जहां मर्जी घूमो। अब मन को लौकिक में भी भक्ति में भी लोग क्या कहते हैं, क्या उपाधि देते मन को? मन चंचल घोड़ा है, तो चंचल घोड़े को क्या करना होता है? लगाम लगानी है। तो जब तक हम ज्ञान और योग दोनों को ठीक तरीके से समझेंगे नहीं, हमारा मन कभी भी हमारे वश में नहीं होने वाला है। बाबा ने अज्ञान काल से ही अपने मन बुद्धि संस्कार से बात करना या उनका रोज सभा लगाना है ना, मन तुम क्या करता है सारा दिन, बुद्धि तुम कहाँ जाती हो, संस्कार भी उनको भी देखना, चेक करना मेरे संस्कार कहाँ तक परिवर्तन हुए। तो जैसे बाबा दरबार लगाता था हमें भी दरबार लगानी चाहिए, तभी तो हमारा मन बुद्धि और संस्कार जो है ना उनमें परिवर्तन आएगा। तो जो बाबा के संस्कार है वो मेरे संस्कार बन जाएं, बाबा के संस्कारों को अपना निजी संस्कार, क्योंकि लौकिक में भी बोलते हैं ना, बच्चा जो है उसको देखते ही बोलते ये तो बाप जैसा है, इसका बाप जैसा करता वैसा ही करता है। कुछ अपने स्वरूप से बाप को प्रत्यक्ष करते, कईयों का चेहरा मिलता है ना तो फट से हम पहचान लेते हैं कि ये तो उसका बच्चा लगता है। हमें भी देखकर लोग कहें ये लगते हैं शिव बाबा के बच्चे, कल्याणकारी है ना। तो हमारे मन में सदा सर्व के लिए, चाहे वो ज्ञानी आत्माएं हों अज्ञानी आत्माएं हों, आपको चाहने वाले हों या आपको न चाहने वाले हों, हरेक के प्रति मन में कल्याण की और उन आत्माओं को प्राप्ति कराने की भावना हो कि मुझे सबको देना है। ऐसा नहीं, कई माताएं बोलती ना हम सबको शुभ भावना दे सकते पर मेरे पति को नहीं दे सकते, वो तो रावण जैसा है, बहुत बार दे दिया अभी बार बार नहीं दे सकते। अब देखो हम कई बहने हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में कहानी सुनाते हैं कि भाई एक व्यक्ति को शाहूकार बनना था तो उसको मिट्टी का मटका दिया गया, 24 घंटा चैंटिंग करो मिट्टी का मटका सोने का बन जा, लेकिन बाद में वो थक गया, 15 मिनट पहले वो थक गया, बोला मिट्टी का मटका पीतल का बन जा तो बन गया। क्योंकि सिद्धि तक पहुंचने तक हम थक जाते हैं, बहुत समय हमने शुभ भावना दी, काम होने वाला था तभी हम थक जाते, बोलते नहीं आज से इसको नहीं, कोई शुभ भावना नहीं देना, इसको मैं कभी नहीं मधुबन लेके जाऊंगी, इसको कभी सेंटर पर नहीं लेके जाऊंगी, इसको थोड़ी शुभ भावना बोलते। शुभ भावना निरंतर बनी रहे, सदा रहे, सबके प्रति रहे, जैसे बताया सूर्य कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष करता है क्या, कि जिससे गुस्सा आए उसको जला दूं, उसके घर को भस्म कर दूं, जिससे प्यार आए उसको चांदनी दूं, उसके ऊपर सोना बरसाऊं? नहीं, उसकी किरणों से जिसको जो लेना ले लो। अब देखो साइंटिस्ट लोग उसकी किरणों से सोलार एनर्जी से देखो बिजली बना रहे हैं, कितनी गाड़ियां चला रहे, कितनी मशीनें चला रहे हैं। डॉक्टर लोग भी D3 के लिए बोलते हैं ना, धूप में घूमो सुबह सुबह, आपके बॉडी में भी जो D3 की कमी है पूरी हो जाएगी। कई दवाइयां तैयार करते हैं आयुर्वेदा वाले सूर्य की किरणें। ज्ञान चाहिए ना, किस 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 प्रकार से कौन से कलर का, कलर थेरेपी वाले भी सूर्य की किरणों को अलग अलग कलर की बॉटल्स में तेल भरते या पानी भरते हैं, परंतु ज्ञान के बिना वो भी कुछ नहीं कर सकते। हम तो उल्टा सुल्टा कर देंगे ना, जहां नीला भरना है वहां लाल भरेंगे, जहां लाल भरना है वहां नीला भरेंगे, तो उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो इसीलिए मनसा सेवा करने का भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान माना हमारी बुद्धि में स्पष्टता हो, स्पष्ट भी हो और स्वच्छ भी हो बुद्धि, क्योंकि जब हम कंफ्यूज होते हैं सामने वाला भी कंफ्यूज होता है। आप जिसको ज्ञान सुना रहे हैं या आप जिसका कल्याण करना चाह रहे हैं, वो भी बेचारा समझता है मैं कौन सी दुविधा में हूं, कौन से जंगल में फंसा हुआ हूं, कौन मुझे बाहर निकालेगा। तो इसलिए अपने मन में उलझन भी ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी ना हो, सबको सुख देने की भावना हो, क्योंकि हम दुखहर्ता सुखकर्ता के बच्चे हैं। कोई बहुत बीमार है, मदद चाहता है, उस समय उस आत्मा को पावरफुल योग की दृष्टि दो। उसको महसूस होगा आप मेरे पास आए, आपने मेरा दर्द मिटा दिया। लेकिन हमको ऐसा नहीं महसूस कराना है मैंने किया, ये महसूस नहीं करना है। क्या करना है? बाबा को कहना है, बाबा आप दुख हरता सुख करता हो, आप बाबा के साथ अपने मन को कनेक्ट करेंगे, बाबा आपके अंदर वो शक्ति भरेगा, आपकी भ्रुकुटी से वो आत्मा को शक्ति का अनुभव कराएगा। कई बार उनको साक्षात्कार भी होता है, फरिश्ते रूप में हमारे पास आए, हम एंजेलिक स्वरूप में ही उन आत्माओं के पास जा सकते हैं। इसलिए बार बार हम ये जो बाबा हमको ड्रिल कहते हैं ना, कभी साकारी लोक में आओ, कभी फरिश्ता बन जाओ, तो कभी बीच बीच में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तो ये तीनों लोकों में जाने और आने का अभ्यास होगा, तभी हम ये सूक्ष्म सेवा भी कर सकते हैं। तो ये भी नहीं है कि हमें केवल मनसा सेवा ही करनी है, लेकिन बाबा के यज्ञ की हर प्रकार की सेवा हमारे मन को शक्तिशाली बनाती है, खुशी मिलती है। आप देखो यहाँ आप अगर 100 रोटी बेलकर आएंगे तो बहुत खुश हो जाते हैं, बड़ा मजा आया आज यज्ञ की सेवा करके आए। घर में अगर बनाएंगे तो हाथ पैर दबाने वाला कोई चाहिए, यहाँ तो बाबा ने मसाज भी कर दी, आपने सेवा की, बाबा ने साथ साथ मसाज कर दी। तो सेवा समझकर करने से खुशी होती है, शक्ति मिलती है। वही हम बोझ समझकर करते हैं तो दर्द महसूस होता है ना। तो इसीलिए अभी बाबा कहते हैं मन से हरेक आत्मा के मन के समीप जाओ। किसी का भी दिल लेना होता है तो कैसे लेते हो? कोई दिल की बात सबको सुनाता है? किसको सुना सकते? हाँ, किसको सुनाते हो दिल की बात? आपका दिल बहुत भारी है, भरा हुआ है, पर आपको लगता है ना, जैसे नहीं हमारे शरीर में भी कभी कभी भारी लगता है, तो जब तक हम कहीं उल्टी नहीं कर देते तो वो मन का भारीपन, बोलते ना दिल भारी भारी है, खाने की भी इच्छा नहीं है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, वो जब वॉमिट हो जाता है तो क्या होता है, फीलिंग चेंज हो जाती है, लाइटनेस लगता है, बहुत अच्छा, हल्के हो गए। और ऐसे ही जो भी मन में बातें हैं अगर वो बहुत तंग कर रही है, मन भारी भारी है, तो हम कहां जाते हैं? ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो चारों तरफ ढिंढोरा पिटा दे, हाँ, किसके पास जाएंगे? जिन पर विश्वास है कि ये मेरी बात कहीं नहीं बोलेंगे, वो सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन है? बाबा। इसलिए बाबा बोलते, मेरा नाम क्या है? दिलाराम। आपके दिल को आराम चाहिए तो दिलाराम को कह दो। आप पत्र लिखते हो ना रोज, तो पत्र भी बाबा पढ़ता है। पढ़ता तो क्या, आपके मन को पढ़ लेता है वो, लेकिन आपकी सच्चाई आपके शब्दों में, लिखत में आती है। बाबा सब कुछ देखता है, सुनता है। हमको लक्ष्मी माता को याद होगा, ये मधुबन से भट्टी करके गई, इसका सब कार्ड, बैंक का एटीएम कार्ड, सारे कार्ड जो है, वो छोटा पर्स टैक्सी में गिर गया, बहुत घूम रही थी पुलिस के पीछे। एक ही दिन मुझे सुनाया, मैंने बोला आप बाबा को लेटर लिखे? बोले नहीं। मैंने बोला अभी लिखो। लेटर लिखा, सारे कार्ड मिल गए इनको, फिर से नए आधार कार्ड, तब सब चला गया था। बैंक से पैसा भी निकाल लिया था वो ड्राइवर ने, लेकिन वो बैंक वाले भी होशियारी से इनका फिर से ट्रांसफर कर दिए उसके बैंक से। इनके बैंक में कुछ भी नहीं गया, क्योंकि बाबा को बोल दिया। इतना जादू का काम होता है, बाबा इतना फास्ट काम करता है, कोई पुलिस नहीं कर सकती, कोई कोर्ट से भी नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, है ना, द्रौपदी की तरह लास्ट में उसने भगवान को बुलाया, तो भी भगवान ने बोला क्या, उलाना दिया? तुमने पहले मेरे को क्यों नहीं याद किया? उसने उलाना दिया, आपने आने में इतना विलंब क्यों किया? तो क्या कहा भगवान ने, तुमने पहले मुझे थोड़ी बुलाया, तुमने अपने पांच पतियों को बुलाया, गुरुओं को बुलाया, जब कोई मदद नहीं किया तब मुझे बुलाया। हम भी ऐसे करते ना, पहले पुलिस से देख लेते, कोर्ट से देख लेते, नहीं होता बाबा अब आप कर दो। तो इसका मतलब हम प्यार करते हैं बाबा को, विश्वास रखते हैं बाबा पर। पूरा विश्वास नहीं है ना, अरे बाबा क्या कर सकता ऊपर बैठा बैठा, वो सब कुछ कर सकता है, सबकी बुद्धि को फिरा सकता है। हम कई बार कई भाई बहनों को बोलते, कभी योग का प्रयोग करके तो देखो, आपका जो भी काम नहीं हो रहा है बाबा को कहकर देखो। कई लोग बोलते हमारी लैंड चली गई, हम बोलते आप जाओ वहां योगदान करो यहां से बैठ करके, और जिस आत्मा ने लिया उसको भी गुड विशेस दो, बैड विशेस नहीं देना। हाँ, इसका ऐसा हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, फिर तो आपको देगा ही नहीं वो। उसका कल्याण हो, उसको इतना मिले जो मेरी जमीन वापिस कर दे, ऐसा हम सोचते कभी शुभ। एक बार अपना इंडिया के लोगों का एरोप्लेन शायद नेपाल जाते जाते हाईजेक हुआ था, तो सारे पेपरों में आ रहा था, टीवी में आ रहा था। हमने तब सरला बहन को याद होगा, हमने बशीरबाग में जब हमारा पहला सेंटर खुला था तो सेलार में हमने एक प्रोग्राम रखा, सभी को बोला कि आप लोग है ना पाकिस्तान को दुश्मन समझ के नहीं, ऐसा वो छोड़ेगा नहीं तब तक, आप उसको गुड विशेस दो, उसको क्या चाहिए? अगर हम भी उसको तंग कर रहे हैं मन से, तो वो उनको तंग करेगा, हमारे लोगों को। इसलिए हम लोग उन आत्माओं को शांति दें, प्यार दें, और प्यार से उनको कहें आप हमारे भाई बहनों को छोड़ दो, देखना आप कल सुबह तक न्यूज आएगी वो छूट गए। और ऐसा ही हुआ, फिर उनके फोन आए कि अरे बहन जी ये तो बहुत अच्छा प्रयोग कराए आप, आ गए हमारे वापिस, नहीं तो जिंदा तो आते नहीं थे कभी। तो इतना कमाल की सेवा है ये, मनसा की सेवा। लेकिन यही है कि मन में दुर्भावना ही नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन कौन है, बाबा ने क्या बताया। कोई भी व्यक्ति दुश्मन नहीं है, जो भी दुश्मन बने हैं उनके अंदर रावण है, इसलिए रावण को मारो। उनके अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रावण है ना, जो भी तंग करने वाले टेररिस्ट हैं उनके अंदर रावण का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और वो लोगों को तो मालूम नहीं है कैसे उनके रावण को हम निकालें, क्योंकि उनके अंदर भी रावण बैठा हुआ है। इसलिए रावण को रावण आकर्षण करता है ना। तो हम जब मनसा को स्वच्छ रखेंगे ना, तो मैग्नेट की तरह आत्माएं खींच करके आएंगी, इतना आकर्षण होगा। जैसे शुरू शुरू में बाबा ने कोई मीडिया का या किसी का भी साधनों से सेवा नहीं की, कोई साधन नहीं थे, प्रदर्शनी नहीं थी, कोई भाषण देने वाले स्पीकर नहीं थे, लेकिन शुरू शुरू में कैसे सेवा की बाबा ने मनसा से। कईयों को साक्षात्कार हुए ब्रह्मा बाबा के और रास्ता भी देखा और बाबा तक पहुंच गए। तो हमारा आदि भी मनसा सेवा से स्टार्ट हुआ और अंत समय भी वही होना है जो आदि में हुआ है। तो इसीलिए उसका हमें बार बार अभ्यास करना है। कोई भी एक बात को, एक घटना को लेकर आप अगर योग का प्रयोग करेंगे मनसा से, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे हम कोई चीज हमको आती नहीं है लेकिन हम बना लेते हैं तो फिर कितना इंटरेस्ट आता है कि फिर अभी हम और एक बार बनाएंगे। जैसे माताएं कोई नया आइटम सीखती हैं तो बार बार सबको खिलाएंगे, बोलेंगे ना मैंने अभी नया नया सीखा है, आप आना मेरे घर में भी, उमंग बढ़ता है ना। तो इसमें भी उमंग उत्साह चाहिए, मनसा सेवा करने के लिए भी बहुत मन में उमंग उत्साह चाहिए। और प्रश्न नहीं, प्रश्न चित्त नहीं बनना है। क्या बनना है? प्रसन्न चित्त होंगे तो आप औरों को भी प्रसन्न कर सकेंगे। अगर आपके ही प्रश्न खत्म नहीं हो रहे, ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्यों हो रहा मेरे साथ, ये कैसे बदलेगा, ये आदमी को तो मैं मनसा सेवा कर करके तक गई, क्या क्यों नहीं। देखो आज एक डॉक्टर को ही देख लो, हम उसके पास बार बार जाते हैं, हम वही कंप्लेन सुनाते रहते हैं ना कि नहीं मेरा बीपी ठीक नहीं हो रहा, मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही, मेरे पेट पे दर्द निरंतर। वो क्या करता है, बार बार छोड़ देता है आपको कि जाओ अभी दूसरे डॉक्टर के पास, मैं हार गया। डॉक्टर कभी हार नहीं मानता, वो डोज चेंज करके देगा, एक्सपेरिमेंट करता रहता है, निरंतर करता रहता है, आखिर एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो हम क्या करते, कोई भी अभ्यास थोड़े दिन करते हैं फिर बोलते कुछ भी तो रिजल्ट नहीं आया, छोड़ दो। तो छोड़ना नहीं है, लेकिन निरंतर उस अभ्यास को कायम रखें। और ये अभ्यास कब शुरू करें, कब शुरू करना है, हाँ? समय कौन सा है? अमृत वेले से, क्योंकि बाबा कहते हैं ना अमृत वेले बहुत शुद्ध वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल का भी हमें सहयोग मिलता है। उस समय उठते कौन है, बाबा के बच्चे या भक्त लोग? तो माहौल है ना, भक्त भी उठते हैं ना। आप देखो सिख लोग भी अमृत वेले उनके गुरुद्वारों में है ना भजन कीर्तन शुरू होता है, मंदिरों में भी सुप्रभात है ना। तो वो समय जो वायुमंडल है बहुत पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सभी लोग भगवान का आह्वान करने वाले ही उठते हैं। तमो प्रधान आत्मा ही सो जाती है उस समय पर, तमो प्रधान आत्माओं को नींद भी उसी समय आती, ब्रह्म मुहूर्त के समय है ना। कोई बीमार भी बोलते मेरे को नींद कब आई, 3-3.30 बजे के बाद आ गई, 2-2.5 बजे के बाद आई, उनको सुला देता है बाबा। तो इसलिए उस समय हम नींद के प्रभाव में नहीं रहे, निद्रा जीत होकर के, क्योंकि बाबा हमको कितना प्यार से कहते हैं मेरे नींद को जीतने वाले बच्चे। हम निद्रा के अधीन नहीं लेकिन निद्रा को अधीन करके सोएं। योगी की नींद भी उसके वश में होती है, भूख भी उसके वश में होती है, सब कुछ, क्योंकि अपनी कर्मेंद्रियों पर वो जीत प्राप्त करता है। तो इसलिए हमारा जीवन ही योगी जीवन है, तो फिर हमको ये तो पूछना ही नहीं है ना कितनी बार करें और क्या करें, जीवन ही योगी जीवन है ना। बाबा बहुत बार बोलते हैं, अभी आप इतने क्लासेस सुने, सभी ने बोला 2 घंटे के या 4 घंटे के या 8 घंटे के योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। तो जिसका योगी जीवन है उसको योग लगाना क्या मुश्किल है। और वास्तव में हमें योग समझ में नहीं आता कईयों को, हमारा योग नहीं है तो हम क्लास में क्यों आते हैं, हमारा योग नहीं है तो हम बीके क्यों बने, बीके लाइफ बिता रहे हैं ना, श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, तो अगर योग नहीं है तो उसकी बात मानते हैं जिससे हमारा योग नहीं है। हम बाबा की बात को मान रहे हैं, हमारा योग है, लेकिन निरंतर रखना है। उसके लिए जो बातें हमारे मन को डिस्टर्ब करने वाली, या जिन आत्माओं का संग भी, संग दोष भी हमारे मन को मलिन करता है ना, जब हम इधर उधर की बातें करते हैं, बड़ा मन खुश था, प्रसन्न था, लेकिन किसी ने ऐसी बात सुना दी, प्रसन्नता गायब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, संग भी श्रेष्ठ हो। इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, संगठन में रहते हुए भी एकांत प्रिय बनो, एकांतवासी बनो। जब हम एक के अंत में खोए रहेंगे ना, तो आपको कुछ भी सुनते हुए भी सुनाई नहीं देगा। जैसे बाबा के लिए भी हम महारथियों से सुनते हैं ना, लास्ट लास्ट में बाबा झोपड़ी में इतना गहन तपस्या में एकदम कर्मातीत अवस्था के अनुभव में रहता था, और बाबा के पास हम लोग कुछ कंप्लेंट्स लेकर जाते थे, लेकिन बाबा की इतनी उपराम स्थिति, इतना एकांत प्रिय बाबा ऐसा बैठा होता था कि हमारे मन के प्रश्न सारे खत्म। और बाबा जैसे ही नीचे उतरेगा, हाँ बच्चे कुछ कहना है, तो बाबा की संपूर्ण अवस्था देखने के बाद बच्चों को ये ऐसी फालतू बातें सुनाने का, हल्की बातें, अब बाबा इतनी ऊंची स्थिति पर गया और हम उसको उतारे, नहीं बाबा कुछ नहीं कहना, जो कहना था सूक्ष्म में कह दिया और हम भरपूर हो गए। कमाल है ना, ये भी ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा मम्मा ने भी निरंतर अभ्यास किया, जबकि उनका पद फिक्स था पहले दिन से ही, सब कुछ मालूम है, मैं ही नारायण बनने वाला हूं, मेरा ही नंबर वन है। अच्छे से अलबेला हो सकता था ब्रह्मा बाबा कि मैं तो कुछ भी नहीं पुरुषार्थ करूं तो भी क्या होने वाला है, मेरा तो नंबर वन ही है ना। हमें भी ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, अपने बड़ों को इन बातों में फॉलो करना है, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा कितनी ऊंच है, जो आज सारे यज्ञ का इतिहास में लिखी हुई वो बातें हम पढ़ते हैं। आज ब्रह्मा बाबा को कम लोगों ने देखा हुआ है यज्ञ में, अभी तो वो रहे नहीं जिन्होंने देखा, बहुतों ने शरीर ही छोड़ दिया है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बाबा को आंखों से देखा है, लेकिन मन से कितनों ने देखा है, सबने देखा है। सबको लगता है ना ब्रह्मा बाबा को हमने देखा है, हम जब बाबा के चरित्र सुनते हैं तो ऐसा फील करते हैं ना हम भी बाबा के साथ थे, हमने भी देखा है। जो हमारा गीत भी है ना, हमने देखा हमने पाया, शिव भोला भगवान किसके तन में पाया, ब्रह्मा बाबा के तन में। हम जब मुरली सुनते हैं तो किसको याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों याद आते हैं या एक ही याद आता है, बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं, है ना। तो मुरली सुनते समय भी चेक करो, मेरा मन और बुद्धि एकाग्र है या इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि मुरली में मन को बाबा रिपेयर करता है। एक बार जानकी दादी ने, बहुत साल पहले की बात, मैं छोटी थी तब, दादी ने हमसे एक प्रश्न पूछा कि बाबा मुरली तो एक घंटा या डेढ़ घंटा सुनाता है, लास्ट का योग 3 मिनट्स करते हैं, क्यों क्यों ना 3 मिनट में मुरली सुने और 1 घंटा योग करे, जबकि योग तो मुख्य है। लेकिन दादी ने बताया, जैसे हमारे कोई भी बर्तन में जिसमें हम पानी भरते, या ओवरहेड टैंक की समझो, उसमें लीकेज है, आप मोटर चालू रखो 24 घंटा भरेगी नहीं, क्योंकि उसमें होल बहुत बड़ा है, जितना पानी जा रहा है ऊपर से उतना नीचे से निकल रहा है, टैंक खाली। तो इसलिए मुरली सुनते समय आप चेक करो बाबा कितना रिपेयर करता है, हमारी मन की भी चेकिंग होती है, हमारी बुद्धि की भी चेकिंग होती है, हमारे कर्मों की भी चेकिंग होती है। सब सुना देता है, बच्चे ऐसा करते ऐसा करते, लौकिक में है ना बैलेंस नहीं रखते हैं, सब प्रकार की बातें बाबा सुनाता है। तो हम अगर ध्यान से सुनेंगे ना, मन बुद्धि को एकाग्र करके सुनेंगे, आपका मन रिपेयर होगा, 3 मिनट में आपका मन जो है ना, मन बुद्धि वो भरपूर हो जाएगी, जो सुना है आपने वो धारण हो जाएगा 3 मिनट की साइलेंस में। और योग भी तभी लगेगा जब आप ज्ञान सही तरीके से सुनेंगे तो, क्योंकि एक प्रकार से जैसे आप भगवान की पूजा करने से पहले स्थान को स्वच्छ करते हैं ना, तो ज्ञान मुरली जो है वो हमारे मन की सफाई करती है, झाड़ू लगाते हैं, सारा कचरा निकल जाता है, योग से फिर मन भरपूर हो जाता है। और आपको लगेगा, अपने आप लगेगा आपको उस दिन कि आज मैं भरपूर हो गया, जो मुझे चाहिए था बहुत सालों से नहीं मिला आज मिल गया। और आप जब भरपूर होंगे तो आप दूसरों को भी देने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। अपने पास बहुत पानी भरा हुआ है, आपके घर के आसपास कोई भटक रहा है, बहुत प्यास है, पानी नहीं है, दो दिन हो गया हमको पानी नहीं मिला, आप बुला के बोलते आओ आओ हमारे पास से ले लो। अगर आपके पास ही नहीं है तो बुलाएंगे, आपके घर में भी एक ही मटका पानी का, बोलेंगे भाई इसको बुलाया तो मेरा मटका भी खाली हो जाएगा। तो हम इतना अपना मटका भरकर रखें, इतना भरपूर रहें कि कोई शांति लेके जाए, कोई सहन शक्ति लेकर जाए, कोई समाने की शक्ति लेकर जाए, कोई प्यार मांगने वाला है प्यार दे दे, हर एक को हम भरपूर करके भेजें, तो कितनी दुआएं मिलेंगी। और दुआएं लिफ्ट का काम करती है, हम जहां पहुंचना चाहें हमको बाबा वहां पहुंचा देंगे। तो ये है मनसा सेवा का प्रयोग करना। तो हम सब अभी मनसा सेवा करेंगे, किस किस की करोगे, सारे विश्व की करेंगे, विश्व में सब आ जाएंगे, पेशेंट भी आ जाएंगे, ज्ञानी भी आ जाएंगे, अज्ञानी, आपके रिश्तेदार भी, किसी एक के ऊपर हमको विशेष फोकस करने की जरूरत नहीं। मास्टर सूर्य बन अपनी किरणों को सारे विश्व में फैलाएंगे। ओम शांति।